सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं केवलनाणुचोय्य छद्दवमणिज्यं पवाईः नमिऊणजिणं भणिमो दौवणियोगं गणियसारम्। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धवला टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी थी और जिसके कर्ता थे भगवान भूतबलि और पुष्पदंत आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार यह रचना की थी। और यह उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। अब यहाँ हम पहला सूत्र हमने पढ़ा था कि मिथ्या दृष्टि जीव कितने तो अनंत है, तो अनंत के अलग अलग अर्थ भी होते हैं और अलग अलग प्रकार भी होते हैं, तो उसमें हमने 11 प्रकार देखे थे। उसमें से यहाँ गणना अनंत यानी संख्या बताने वाला जो अनंत है उसकी यहाँ बात चलेगी, यानी जिस संख्या के द्वारा माप किया जाता है। तो उसमें भी हमने 3 भेद देखे थे, परितानंत, युक्तानंत और अनंतानंत। तो उसमें से यहाँ कौन सा अनंत लेना चाहिए, तो उस पर बहुत अच्छी तरह से समझाया कि यह एक मध्यम अनंतानंत का भेद है। तो मध्यम अनंतानंत भी अनंतानंत प्रकार के होते हैं, उसमें से भी कौन सा लेना है, तो जैसा जिनेन्द्र भगवान ने यथा योग्य जाना है, देखा है, उसको समझना, फिर भी उसको थोड़ी हमें उसकी कुछ मालूमात होए, इसलिए ये कहते हैं कि जो जघन्य अनंतानंत जो संख्या मूल में लेने पर उसका 3 बार वर्गित संवर्गित करने पर जो संख्या आएगी मध्यम अनंतानंत वाली, उससे भी मिथ्या दृष्टि वाला जो अनंत है वो उससे भी बड़ा है, उससे भी अनंत गुना है, ये बात हमने देखी थी। अब उसमें अलग अलग प्रकार से ये समझाते हुए हमने कल एक द्विरूप वर्गधारा देखी थी। इस वर्गधारा में स्टार्टिंग पॉइंट है 4, क्योंकि द्विरूप 2 का वर्ग, द्विरूप वर्ग 2 का वर्ग है 4, तो 4 हमारा पहला स्थान है। अभी 4 के आगे उसका वर्ग का वर्ग का वर्ग का वर्ग वर्ग का वर्ग करते जाना, तो कहते 4 का वर्ग 16, उसका वर्ग 256, उसका वर्ग 50, उसका वर्ग 42, उसका वर्ग 61, ऐसे आगे गाड़ी चलेगी। तो कहाँ तक चलेगी, केवल ज्ञान तक चलेगी, ख्याल है। बीच में बहुत बहुत पड़ा, कभी पल्ले भी आएगा, कभी और भी अन्य अन्य संख्या उसमें आएगी, असंख्यात की बहुत सारी संख्या आएगी, फिर अनंत की संख्या आएगी, जघन्य परितानंत भी उस लाइन पर आएगा, युक्ता संख्यात भी, युक्तानंत भी आएगा, परितानंत, युक्तानंत, अनंतानंत। तो मेथड यही कि वर्ग का वर्ग वर्ग का वर्ग वर्ग का वर्ग करते जाओ, ये अपना बेसिक यह हमने देखा था। हमने 2-3 नए शब्द भी देखे थे, विरलन करना, देय देना और उसका गुणाकार करना वगैरह। तो हम देखते हैं विरलन करना का अर्थ क्या है, कल हमने देखा था, फिर दोबारा सोचते हैं। कोई हम एक दृष्टांत के लिए 4 संख्या लेते हैं, तो 4 संख्या ये हमारी विरलन भी है और 4 ही संख्या हमारी देय राशि भी है। हमने 2 राशि अभी यहाँ नक्की की है, 4 संख्या, तो उसको नहीं, आपका ऐसा प्रश्न है, विरलन और देय राशि क्या हमेशा सेम समान वही रहेगी, ऐसा जरूरी नहीं है, ये जरूरी, पर जब हम वर्गित संवर्गित करते हैं तब वो वही राशि रहेगी, जिसका विरलन करना है वही देय राशि, तभी तो हम वो, तो 4 की संख्या अगर हम कहेंगे, 4 हमारी राशि 4 है, तो 4 ही विरलन राशि और 4 ही देय राशि है। 4 का विरलन करने ने एक 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 4 जगह लिख दिया हमने, 4 को बिखेर दो, एक एक में बिखेर दो, तो 4 जगह एक एक लिखना पड़ेगा, उसके हर एक के माथे पर हम 4 4 4 4 संख्या लिखते हैं, यानी हमने 2 पंक्ति की, पहली नीचे की पंक्ति में एक 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 लिखा और उसके माथे पर दूसरी पंक्ति में चार 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 लिखा। तो कितने बार लिखना? तो जितने वहाँ एक हमने लिखे उतनी बार लिखना है, तो चार बार। अभी तो ये हमारी छोटी संख्या है तो इसलिए ख्याल में आता है। बड़ी बड़ी संख्याओं में अगर समझो हम असंख्यात बार लिखे या अनंत बार लिखे तो वो कैसे? इसलिए यहाँ कहते जो यहाँ विरल अंक कर दिया है उसके हर एक के माथे पर वही संख्या लिखनी और फिर आपस में उसका गुणाकार करना। विरलन राशि वही, देय राशि वही, और जब आपस में एक बार गुणकार होता है तब उसको हम कहेंगे इसको वर्गित संवर्गित किया, एक बार वर्गित संवर्गित हुआ। वर्गित संवर्गित करने पर जो राशि आती है, अब उतने प्रमाण विरलन करना और उतने ही प्रमाण देय राशि लेना, ऐसा करके फिर वर्गित संवर्गित करना, ये दूसरी बार वर्गित संवर्गित हुआ। जो राशि आती है उसको फिर उतनी ही राशि को विरलन कर देना और उसी वही राशि देय रूप से देना सब जगह, आपस में गुणा करना, तब हम कहेंगे तीन बार वर्गित संवर्गित किया। हमने दो संख्या का दृष्टांत देकर देखा था कि दो संख्या को एक बार वर्गित संवर्गित किए तो दो इन दो गुना दो चार हुए। चार राशि को विरलन कर देना और चार को ही देय करना तो चार गुना चार गुना चार गुना चार 256 राशि आ गई। अब ये जो 256 ये दो बार हुआ, 256 राशि को यानी 256 बार एक 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 लिखो, हर एक के ऊपर 256 256 लिखो, आपस में गुणा करो, यानी 256 गुना 256 तो 65 आती है, यानी इसका अर्थ होता है 256 के बदले उसके आधे कितने 128 बार 65 लिखो और वर्ग करो, ये वर्ग खाली नहीं उसका गुणा करो, तो ये कितनी बड़ी संख्या होगी? तो 617 डिजिट वाली संख्या हो जाती है, ये हमने कल देखा था। तो दो संख्या से स्टार्ट करो और तीन बार वर्गित संवर्गित करो तो इतनी बड़ी संख्या हो जाती है। तो हमने जो देखा है कि जघन्य परिता परिता नहीं, जघन्य अनंतानंत अपना स्टार्टिंग पॉइंट रखकर उसको तीन बार वर्गित संवर्गित करेंगे तो जो कोई महान राशि आ जाएगी वो कोई एक मध्यम अनंतानंत का विशिष्ट भेद है, उससे भी मिथ्या दृष्टियों की संख्या अनंत गुणा है, यानी वो कितनी बड़ी संख्या है वो हमारे ख्याल में आ जाता है। अब यहाँ हम पढ़ेंगे, उसके बाद उन्होंने कुछ यहाँ किसके अर्धच्छेद कितने होते हैं उसकी भी बात की थी। अब ये जो हमने द्विरूप वर्ग धारा देखी थी, हम स्टार्टिंग की बात करेंगे, 4, 16, 256 और 65, ये चार संख्या जो है वो द्विरूप वर्ग धारा के पहले चार स्थान है, तो जिस स्थान पर होगा वो वर्ग, तो चार पहले स्थान पर है तो चार की वर्गशाला का एक है, 16 की वर्गशाला का दो है, 256 की वर्गशाला का तीन है, तीसरे स्थान पर है, और 65 यानी 65536 की वर्गशाला का चार है क्योंकि वो चौथे स्थान पर है, ख्याल है? अब इनके अर्धच्छेद यानी आधा आधा करते जाओ तो कितनी बार उसका आधा करेंगे? जब तक एक नहीं आता तब तक उसका आधा आधा करते जाओ, तो उसके अर्धच्छेद कितने हो गए? तो चार के अर्धच्छेद होते दो, चार के अर्धच्छेद दो है तो चार का वर्ग करो 16 है, तो 16 के अर्धच्छेद कितने होते हैं? तो दुगुने होते हैं, तो चार होते हैं। 16 का वर्ग 256 है तो 16 के अर्धच्छेद चार थे तो 256 के कितने हो जाएंगे? आठ हो गए, बराबर। 256 के अर्धच्छेद देखो, अर्धच्छेद इन्हें कितनी बार दो से उसको डिवाइड कर सकते हैं? दो बार चार को, या उल्टा लिखो दो गुना दो करेंगे तो चार संख्या आती है। 16 संख्या लाने के लिए दो संख्या को कितने बार आपस में गुणा करना पड़ेगा? चार बार, है ना? दो गुना दो गुना दो गुना दो, तो एक दो तीन चार, चार इसका अर्धच्छेद हुआ, दिखता है? हाँ। अब 256 का, अभी ये 256 को हम कितनी बार अभी डिवाइड करते बैठेंगे? तो आठ बार तो हमारा भागाकार करना पड़ेगा। तो ये हमने आसान तरीका क्या है, जिस राशि का वो वर्ग है, 16 का वर्ग है 256, तो 16 को अर्धच्छेद हमको मालूम है, 16 के अर्धच्छेद है चार, तो उसके वर्ग के अर्धच्छेद उसके दुगुना हो जाते हैं। अभी 256 के अर्धच्छेद हमें मालूम है 8, अब पनट्ठी जैसी संख्या है बड़ी 65,536, उसको हम कितने बार डिवाइड करते बैठेंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। ये नहीं, अभी तो ठीक है, आगे आगे की संख्या को तो वो तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है। तो अभी हमें फॉर्मूला मिल गया, हमें 256 का अर्धच्छेद मालूम है 8 है, तो उसके अर्धच्छेद सॉरी उसके वर्ग का अर्धच्छेद कितना होगा, इसके डबल हो जाएगा, तो यहाँ पनट्टी के अर्धच्छेद हो जाएंगे 16। ये हमने कुछ फिगर्स देखे। अभी इन्होंने कुछ यहाँ फॉर्मूले दिए दूसरे भी, उसको 21 पेज पर हम देखते हैं समाधान वाला। उसमें प्रश्न ऐसा पूछा था कि ये 3 बार वर्गित संवर्गित किए करने के बाद जो राशि उत्पन्न हुई है उससे मिथ्या दृष्टि जीवों की संख्या अनंत गुणा है, ये आपने कैसे जाना, ये प्रश्न था। अभी उसके लिए कुछ फॉर्मूले यहाँ बता रहे हैं। उसको जघन्य परितानंत युक्तानंत और अनंतानंत पर घटित कर रहे हैं, जो हम इस 4, 16, 256 और पनट्टी में घटित करेंगे। यानी हम मान लेंगे कि जहां जहां जघन्य परितानंत है वहां हम संख्या लेंगे 4। तो जघन्य परितानंत के बाद आता है नंबर जघन्य युक्तानंत का, तो जघन्य युक्तानंत की संख्या हम कैसे निकालते हैं, तो जघन्य परितानंत का एक बार वर्गित संवर्गित करो उसको। यानी अपनी भाषा में जघन्य परितानंत रेस टू जघन्य परितानंत इज इक्वल टू जघन्य युक्तानंत। और उसके आगे वाला फॉर्मूला क्या है, जघन्य युक्तानंत का अकेला स्क्वायर कर दो, रेस टू टू करो, या जघन्य युक्तानंत इंटू जघन्य युक्तानंत इज इक्वल टू जघन्य अनंतानंत। युक्तानंत निकाला तभी हमने उतनी बार जघन्य अनंतानंत को रखा, जघन्य अनंतानंत को पहले विरलन कर दिया और वही देय राशि रखकर उसको गुणा किया, यानी हमने उसको एक बार वर्गित संवर्गित किया, तो संख्या ही जघन्य युक्तानंत। जघन्य युक्तानंत को जघन्य युक्तानंत को एक ही बार उसके आपस में गुणा करने, जघन्य युक्तानंत का वर्ग किया, स्क्वायर किया, तो जो संख्या आई है वो जघन्य अनंतानंत आई है। अब इसमें जो वर्गशाला का और जो कुछ है वो उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे।
देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब करना चाहता हूँ, यहाँ पर जो जघन्य युक्ता संख्या जो संख्या बताई
अनंत है, अनंत संख्यात नहीं,
मैं असंख्यात की बात कर रहा हूँ, जघन्य युक्ता संख्यात, वह भी असंख्यात में जब हम गिनते हैं तो जप रेस टू जप ऐसा होता है, जघन्य परिता संख्यात उसका विरलन करके वो जो संख्या आएगी जघन्य युक्ता संख्यात, वो जघन्य युक्ता संख्यात में जितने समय होंगे उतने एक आवली में है, और ऐसी सैकड़ों आवली एक सेकंड में है, यानी एक समय कितना छोटा है, बस ये गणित आगे आने वाला है लेकिन अभी हम उसको थोड़ा सा वेरीफाई करते हैं। जैसा हमने ये अनंत की बात की है वैसे ही असंख्यात में भी उसी तरह से आएगा, मेथड वही है। आगे
देखो, ये हम यहाँ देख रहे थे समाधान हम पढ़ेंगे अभी, जघन्य अनंत अनंत, और ये जघन्य युक्तानंत इतना क्या है मालूम है किसी को, अभव्य जीव जघन्य युक्तानंत जितने हैं, और परंतु भव्य कितने हो गए, क्योंकि मिथ्या दृष्टि की राशि उसके कितने ज्यादा गुणा है हमने देखा, उसको उसका वर्ग करो, अभव्य राशि का वर्ग करो, जघन्य अनंतानंत आएंगे, उसको 3 बार वर्गित संवर्गित करो, उससे भी अनंत गुणे मिथ्या दृष्टियों की संख्या आएगी। तो मिथ्या दृष्टियों में दोनों होते हैं भव्य और अभव्य, है ना, और भव्य और भी ऊपर भी 14वें गुणस्थान तक भी भव्य हो जाते हैं, यानी भव्यों की संख्या अनंत गुणी है अभव्यों से बहुत ज्यादा है। युक्तानंद अभव्य राशि, जैसे जघन्य युक्ता संख्यात हमने आवली के समय देखे, वैसे जघन्य युक्तानंद अभव्य राशि है। ये कौन सी राशि कितनी है वो बाद में आने वाली है, अभी तो हम ये गणित समझेंगे पहले। हाँ, अभी समाधान पढ़ेंगे। देखो, अभी हम मान लेते हैं कि जघन्य परितानंत के लिए हम चार संख्या निश्चित करते हैं। जघन्य परितानंत के लिए चार संख्या निश्चित करेंगे, तो जघन्य परितानंत के अर्धच्छेदों में, चार के अर्धच्छेदों में, चार के अर्धच्छेद है दो, ये फॉर्मूला जो बताया ना वो हम इसमें फिट करेंगे। अंक संदृष्टि कहते इसके, छोटे फिगर लेके हमें समझने के लिए हम फॉर्मूला यहाँ फिट करेंगे। जघन्य परितानंत के अर्धच्छेदों में क्या मिलाना है, उसी की यानी जघन्य परितानंत की एक अधिक वर्गशाला का मिलाना है। अभी हमने चार मान लिया, चार की वर्गशाला का एक ही है, एक में एक अधिक करो तो दो हो जाएंगे, तो जघन्य परितानंत के अर्धच्छेद में जघन्य परितानंत की वर्गशाला का प्लस एक मिला दो, चार आ गए ना, बराबर। और क्या करने पर जघन्य, टू प्लस वन प्लस वन, देखो देखो, जघन्य परितानंत हमने चार मान लिया, चार का अर्धच्छेद दो है और चार की वर्गशाला का एक है, तो वर्गशाला का प्लस एक करना, टू प्लस वन प्लस वन, चार आ गया। तो ये चार क्या है, तो चार है वो जघन्य अनंतानंत की वर्गशाला का है, यानी जघन्य परितानंत के जितने अर्धच्छेद है। देखो ये द्विरूप वर्गधारा इसी आगे तक चलेगी, तो चलते 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 पहले जघन्य परितानंत का स्थान आ जाएगा, फिर इसका वर्ग वर्ग का वर्ग वर्ग का वर्ग वर्ग का वर्ग करते जाओ, बहुत बार किया, तब जघन्य युक्तानंत आ जाएंगे, और इसका एक ही बार वर्ग करो, इसका अगला ही स्थान जघन्य अनंतानंत होगा। अभी अपना फॉर्मूला क्या है, जघन्य परितानंत के जो अर्धच्छेद है, जप के अर्धच्छेद, उसमें उसी की वर्गशाला का, अभी यहाँ वर्गशाला का एक नहीं होगी, नहीं नहीं वो तो चार की वर्गशाला एक थी, सोलह की दो थी, पनट्टी की चार थी, बादल की पांच थी, इकट्ठी की छह थी, तो ये तो इसकी अनंत वे स्थान पर आ जाएगी, इसकी वर्गशाला का भी जघन्य परितानंत की असंख्यात होगी, अनंत नहीं होगी, क्योंकि वो तो छोट स्टार्टिंग पॉइंट है अनंत का, उसकी वर्गशाला का असंख्यात में जाएगी। आगे आगे वाले में भेद ज्यादा होंगे, मध्यम के भेद ना, मध्यम संख्या के भेद ज्यादा होंगे, उसकी अभी हम बात नहीं करिए, फॉर्मूला पहले जान लो। अभी देखो, जघन्य परितानंत के अर्धच्छेद में जघन्य परितानंत की यहाँ जो कोई वर्गशाला का हम वह लिखते हैं, प्लस वन करना, यानी ये जपो के छ प्लस व प्लस एक, तो ये उसकी वर्गशाला का हो जाएगी, यानी वो जघन्य अनंतानंत कौन से स्थान पर है द्विरूप वर्गधारा में, ये हमें मालूम हो जाएगा। जघन्य अनंतानंत, अनंतानंत, जघन्य अनंतानंत, उसमें एक मिला गया ना हमने, ये एक माइनस कर दो तो जघन्य युक्तानंत आ जाएगा, एक प्लस किया तो हमें आगे वाला लेना था, अभी ये एक यहाँ नहीं लिखो तो इसके अर्धच्छेद प्लस वर्गशाला का, तो जघन्य युक्तानंत की वर्गशाला का जाए आएगी। हाँ, एक रिक्त। अब हम इस पर घटाएंगे तो आसान होता है, क्योंकि ये फिगर्स हमारे पहचान के, चार के अर्धच्छेद दो, चार की वर्गशाला का एक, वर्गशाला का मैं एक और प्लस कर दो तो दो हो जाएंगे, दो प्लस दो चार हुए, और हमारे गणित के अनुसार हमने निकाला था कि चार चार रेस टू चार कितने आते हैं, फोर इंटू फोर इंटू फोर इंटू फोर 256, ये हमारा जघन्य युक्तानंत आ जाएगा 256, और उसका वर्ग करो तो जघन्य अनंत अनंत हमारी पन्नठी हमने जो मान लिया है उसके स्थान पर आ जाएगा। क्या ले ना, अभी हमारा फॉर्मूला वहाँ फिट होगा, चार के अर्धच्छेद प्लस चार की वर्गशाला का प्लस एक, उसका उत्तर चार आया, वो पनट्ठी का पनट्ठी की वो वर्गशाला का है। अब आगे पढ़ेंगे तीसरी लाइन, तथा जघन्य परितानंत के द्विगुणित अर्धच्छेद, अर्धच्छेदों को दो गुणा करना। जघन्य परितानंत हमने मान लिया है चार, चार के अर्धच्छेद है दो, दो को दो गुणा करना चार हुए, द्विगुणित करने पर द्विगुणित अर्धच्छेदों से जघन्य परितानंत के गुणित करने पर, अपनी भाषा में उसको गुणित करने पर, यानी जघन्य परितानंत मल्टीप्लाइड बाय अर्धच्छेद दो गुणा करके, दो गुणा अर्धच्छेद, तो कौन सी संख्या आ जाएगी? हाँ, इसको चार से, चार गुणा चार सोलह आ जाएगी, तो ये जो सोलह आ जाएगी वो जघन्य अनंतानंत के अर्धच्छेद आ जाएगी। देखो अभी यहाँ जघन्य परितानंत के जो अर्धच्छेद है उसको दो गुणा करना, यानी दो छः करना अभी इसको, और इसको किससे गुणा करना, जप से गुणा करना, तो क्या आ जाएगी, जघन्य अनंतानंत की अर्धच्छेद आ जाएगी, अर्धच्छेद आएंगे। हमने देखा था ना, इसको द्विगुणित करा, जघन्य परितानंत के स्थान पर हमने चार पकड़ा है, चार के अर्धच्छेद दो, दो को द्विगुणित करना चार हुए, और चार से जघन्य परितानंत जो हमने चार मान लिया, चार को चार से गुणा किया सोलह आया, तो सोलह ये संख्या पन्नठी के अर्धच्छेद हो गए, जघन्य अनंत अनंत के अर्धच्छेद होते हैं। अभी चौथी लाइन आगे पढ़ेंगे, ये जघन्य अनंत अनंत की अर्धच्छेद शलाकाएं जघन्य परितानंत से असंख्यात गुणी है। क्या कहते हैं, ये जो सोलह है जघन्य अनंत अनंत की जो अर्धच्छेद राशि है वो जघन्य परितानंत से असंख्यात गुणी है। यह अपने फॉर्मूला में चार गुणी आ गई, क्योंकि हमने बहुत छोटी छोटी और अपने मन से फिगर्स ली है, फिर भी क्या समझना, इस राशि से इसके अर्धच्छेद राशि असंख्यात गुणा है। और उसी के अर्थात जघन्य परितानंत के उपरिम वर्ग से असंख्यात गुणी हीन है। अब जघन्य परितानंत का उपरिम वर्ग है ना 16, अपनी इसमें वर्ग हुआ है ना, क्या जघन्य परितानंत को हमने जघन्य परितानंत से गुणा किया है, यानी वो अनंत गुणी हुई ना उसमें, अनंत से गुणा किया उसको, और ये जो संख्या है ये इसकी जो वर्ग राशि है उससे ये जो राशि है देखो असंख्यात गुणी है। इसको फिर पढ़ते हैं, उसी के अर्थात जघन्य परितानंत के उपरिम वर्ग से असंख्यात गुणी हीन है। हीन कहा, हाँ, बीच की राशि। क्या कहना चाहते हैं, जघन्य परितानंत से जघन्य अनंतानंत के अर्धच्छेद असंख्यात गुणा है, बराबर, और जघन्य परितानंत के ये जो अगला वाला जो वर्ग है उससे ये असंख्यात गुणाहीन है, यानी इसके वर्ग से ये वाली राशि असंख्यात गुणाहीन है। अब आगे पढ़ेंगे, इन जघन्य अनंतानंत की अर्धच्छेद शलाकाओं में, ये वाले जघन्य अनंतानंत की अर्धच्छेद शलाका ने अपने उदाहरण में पनट्ठी की अर्धच्छेद ने 16, उसमें जो जघन्य परितानंत की अर्धशलाकाओं से अधिक है ऐसी जगन्य अनंतानंत की वर्गशाला का ये मिला देने पर, क्या कहने पर कहते हैं, देखो देखो ये फॉर्मूला आगे भी घटेगा, जरा स्लोली लेना। जैसे हमने क्या देखा, चार का हमने अर्धच्छेद, उसमें वर्गशाला का प्लस वन मिलाया, तो क्या प्लस वन मिला है ना यहाँ, तो क्या आया था, पन्नटी की अर्धच्छेद राशि आई। वर्गशाला का ही, सॉरी ये वर्गशाला का की बात कर रहे हैं, वर्गशाला का ही। तो यहाँ अभी और आगे की बात कर रहे हैं, अभी इसकी वर्गशाला का में मिलाने की बात कर रहे हैं, आगे वाला स्थान बता रहे हैं। जघन्य अनंतानंत की अर्धच्छेद शलाकाओं में, वो अर्धच्छेद शलाका कैसी है उसका पहले डिस्क्रिप्शन करते हैं, कि जो जघन्य परितानंत की अर्धच्छेद शलाकाओं से अधिक है, ऐसी जघन्य अनंतानंत की वर्गशाला का मिला देने पर, इसका अर्थ नहीं ख्याल में आया, देखो इसका अर्थ बताओ। हाँ, उसमें क्या मिलाना, देखो देखो मिलाना है। हाँ, तो बीच में उसका उसका विशेषण लगाया, देखो फिर मैं पढ़ती हूँ, एक कॉमा से दूसरे कॉमा तक हम बाद करके पढ़ेंगे। देखो नीचे से चौथी लाइन, इन जघन्य अनंतानंत की अर्धच्छेद शलाकाओं में, यानी 16 में, बीच का भूल जाओ, नीचे की लाइन में जघन्य अनंतानंत की वर्गशलाकाएं मिला देने पर, बराबर वर्गशलाका मिला देने पर, हाँ अर्धच्छेद में वर्गच्छेद मिला, वर्गशाला का मिला देने पर क्या होगा, प्रथम बार वर्गित संवर्गित राशि की वर्गशलाकाएं होती है। अभी इसको भूल जाओ पहले से, अभी चार के अर्धच्छेद दो है, दो में चार की वर्गशाला का मिलाओ, एक प्लस वर्गशाला का मत मिलाओ, एक वर्गशाला का ही मिलाओ, तो किसकी वर्गशाला आएगी, तीसरा स्थान आला 256। तो 256 ये चार का क्या है, एक बार वर्गित संवर्गित है। कोई भी संख्या को एक बार वर्गित संवर्गित करो, हम एक संख्या मान लेते हैं, उसके अर्धच्छेद को हम 6 कहेंगे और वर्गशलाका को वह कहेंगे, बराबर। अब इस एक संख्या को एक बार वर्गित संवर्गित करो, यानी x^x आ जाएगा, बराबर, तीसरा नहीं x^x, चार की संख्या लेते तो तीसरा स्थान आया था। तो अभी हम क्या कहेंगे, x के जो अर्धच्छेद है 6 और x की जो वर्गशलाका है वह, 6 प्लस वह करते हैं तो ये जो वर्गित संवर्गित राशि है उसकी वर्गशाला का ये 6 प्लस वह आती है, यानी 6 स्थान आगे चला जाता है वो, नहीं समझे, उल्टा भी ले सकते हैं, कैसे, देखो देखो देखो, हाँ अभी हम देखते हैं यहाँ, अभी x की वैल्यू हमने 4 ली, बराबर, अभी यहाँ 256 आ गए, अभी इसकी वो के यहाँ पर स्थान पहला है, अब 6 मिलाना है, तो 6 मिलाना यानी क्या है, 6 बार उसमें, देखो अभी 4 के जो वर्ग करेंगे तो उसके 6 डबल हो जाएगी ना, अर्धच्छेद चार के अर्धच्छेद दो है, बीच में सोलह हो जाए, चार हो जाएंगे और यहाँ आठ हो जाएंगे, बराबर। यानी ये जो कितनी राशि आगे बढ़े हैं, इतने दो थे, दो और आगे चला जाना, इसका वर्गच्छेद, इसमें छह मिलाना यानी दो मिलाना, वन प्लस टू, तीसरे स्थान पर 256 आता है। अब यहाँ कोई भी राशि हम ले लेते हैं, बहुत ज्यादा हो जाएंगे, देखो कोई भी हम अभी हम पनट्ठी लेते हैं या कुछ भी राशि, समझो ना, हम उसको कोई जरूरी नहीं हम उसको संख्या दो। अभी इसके जितने अर्धच्छेद है और यहाँ उसकी वर्गशाला का है, जो पर एज टू पर राशि आ जाएगी उसके अर्धच्छेद कितने हो गए, पहले हमने देखा था इसका रूल, तो हमने वो अगले वाली फिगर लिखी थी ना, इसकी इसको इसके गुणा करने पर इसकी, इसको द्विगुणित करके गुणा किया था, द्विगुणित किए बिना इसको गुणा करो तो युक्ता संकेत की संख्या आएगी ना, चार दुने आठ आ जाएगी। कोई भी वर्गित संवर्गित राशि, वर्गित संवर्गित राशि कैसे आएगी, समझो हमारी मूल राशि प है तो वर्गित संवर्गित राशि पर एस टू प आती है। अभी वर्गित संवर्गित राशि का अर्धच्छेद कितना आ जाएगा, मूल राशि गुणा उसके अर्धच्छेद यानी प गुणा छेद, ये इसके अर्धच्छेद आ जाएगा। और इसकी वर्गशाला का कौन सी आएगी, व प्लस इसके छे, वन नहीं आएगा, वन हमने वो अगला वाला स्क्वायर लिया था, अगला स्थान लेने के लिए वन किया था प्लस, क्योंकि यहाँ जगन्य युक्तानंत के बदले हम अनंतानंत पर पहुंचे थे, इसलिए वर्ग शलाका में एक और ऐड किया था। देखो 16 को वर्गित संवर्गित करेंगे तो 16 रेस टू 16 आएंगे, 256 नहीं, ख्याल है, पनट्टी का स्क्वायर आ जाएगा। देखो ना 16 को 16 बार करना है तो 16 को दो बार करते हैं, पनट्टी का स्क्वायर क्यों नहीं, आगे इकट्ठी का स्क्वायर हो जाए, इकट्ठी का स्क्वायर हो जाए, 16 को दो बार करेंगे 256 आएंगे, यानी 256 को आठ बार रखना पड़ेगा, 256 को आठ बार के बदले में 256 और 256 पनट्टी होगी, पनट्टी को चार बार रखो यानी इकट्ठी का स्क्वायर, ये बादल का स्क्वायर हो जाएगा, बादल का स्क्वायर गुणा बादल का स्क्वायर, इकट्ठी नहीं, इकट्ठी गुणा इकट्ठी, इकट्ठी का स्क्वायर हो जाएगा। अभी इकट्ठी का स्क्वायर आया है ना हमारा, आपने आपको यहाँ 16 रखना था तो इसके बदले हमने 16 रखे, वो आता है कि नहीं आपको निकालना है। हाँ बिल्कुल क्लैरिटी आएगी, पहले हम निकालेंगे तो कितना आता है तो हमारा गणित सही है कि नहीं ठीक निकलेगा। चार का पहला स्थान, 16 का दूसरा स्थान, 256 का तीसरा, पनट्टी का चौथा, बादल का पांचवा, इकट्ठी का छठा और उसका सातवा, इकट्ठी का स्क्वायर। हाँ अब ये राशि जो कुछ है, यहाँ पनट्ठी आती है, यहाँ बादल आता है, यहाँ इकट्ठी आता है, यहाँ इकट्ठी का स्क्वायर आता है, उसकी अर्धच्छेद राशि 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। अभी नहीं आएगा तो हमारा कुछ मिस्टेक है, वो देखना पड़ेगा। हाँ ये 16:16 यह हमने लिखे, अभी अपना फॉर्मूला फिट करो, इसका अर्धच्छेद राशि 4 है और 16 का वर्गस्थान वर्गशाला का दो तो छठे स्थान पर आएगा, वो इकट्ठी मात्रा आएगा। चार प्लस दो, इसमें चार मिला दो तो छठे स्थान पर आएगा ये। हाँ सातवां आ जाएगा। प्लस वन तो आगे वाले स्थान पर करना है, वर्गित संवर्गित के लिए प्लस वन नहीं करना है।
तो ये बड़ी संख्या में ना कुछ
गड़बड़? नहीं नहीं, एक मिनट, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आगे निकालते ना दूसरा भी। इसका अर्धच्छेद कैसा निकाला था? वर्गित संवर्गित राशि का अर्धच्छेद कैसा निकाला? दिस इंटू इट 64। यानी हमने जो पहले गुणाकार किया वही में कुछ उसी में गड़बड़ है। यानी इकट्ठी पर भी यहीं पर रुकना होगा। करते हैं, करके देखेंगे। 16 को 16 बार लिखना है तो सॉरी सॉरी 256 को 8 बार लिखेंगे, पनट्टी को 4 बार लिखेंगे, बादल को 2 बार लिखेंगे तो इकट्ठी आ गई। यानी मैंने मिस्टेक की थी, इकट्ठी का स्क्वायर नहीं है, इकट्ठी आती है। और अभी ये फॉर्मूला भी फिट होता है इसमें।
अभी इस पे हम लोग बताते हैं, इस पे कैसे आती है इकट्ठी, कैसे आती है। हम लोग अर्धच्छेद को किससे मल्टीप्लाई करेंगे?
यानी देखो 16 के अर्धच्छेद 4, 16 के अर्धच्छेद 4 है, 16 को उसके अर्धच्छेद से गुणा करो तो वर्गित संवर्गित राशि के अर्धच्छेद आ जाएंगे। और 16 के अर्धच्छेद 4 है, उसमें उसके वर्गशाला का 2 मिला दो तो वर्गित संवर्गित राशि की वर्गशाला का आ जाएगी। ये फॉर्मूला तो फिट होना ही है। और ये सारे उन्होंने अनंत स्थानों पर, वहां तो अनंत स्थान बीच में चले जाएंगे, यहाँ तो जो दो चार स्थान है, दो से लगाकर छठा स्थान है जो हम इमेजिन भी कर सकते, और वहां तो बीच में अनंतों का डिफरेंस पड़ेगा। देखो देखो अभी इसके आगे है यही फॉर्मूला, वर्गित संवर्गित राशि पर घटाने वाले हैं। तो अभी हमारी जो वर्गित संवर्गित अभी यहाँ फिट करते हैं और फिट करके फिर इसको पढ़ेंगे। जघन्य अनंत अनंत के ये अर्धच्छेद है। एक बार वर्गित संवर्गित करने पर जो राशि आएगी, अभी इसको यहां से पढ़ेंगे, नीचे से चौथी लाइन, जघन्य अनंतानंत की अर्धच्छेद शलाकाओं में, वो अर्धच्छेद शलाका कैसी है? जघन्य परितानंत की अर्धच्छेद शलाकाओं से अधिक है, ऐसी वर्गशलाकाएं मिला देने पर। वर्गशलाकाएं अधिक है, उसकी वर्गशलाकाएं कितनी है? इसके अर्धच्छेदों से अधिक है। नहीं समझे? देखो अभी यहाँ हम 16 रखते हैं अपनी ओरिजिनल फिगर, और यहाँ 16 का वर्गित संवर्गित राशि है। अभी इसमें फिट करते हैं अपने, ये जो पढ़ेंगे जघन्य अनंतानंत की अर्धच्छेद शलाकाओं में, यानी 4 में क्या करना है? जघन्य परितानंत की अर्धच्छेद शलाकाओं से अधिक है, ऐसी जघन्य अनंतानंत की वर्ग शलाकाएं मिला देने पर। हाँ देखो देखो अपने ओरिजिनल फिगर में आपको समझाना पड़ेगा। जैसे पन यहाँ हम फिर ओरिजिनल एग्जाम्पल पर आते हैं। जघन्य परितानंत के हमने 4 मान लिया तो अपना जघन्य अनंत अनंत पनट्टी होता है, बराबर। अब यहां कहते हैं कि जघन्य अनंत अनंत की वर्गशलाका कितनी हुई? 4 हुई। वो कितनी है? जघन्य परितानंत के अर्धच्छेदों से अधिक है। इतना ही उनको बताना था। जघन्य परितानंत की अर्धच्छेद शलाका कितनी? अभी 2 अपनी एग्जाम्पल में। उससे जघन्य अनंतानंत की वर्गशलाका भी ज्यादा है, क्योंकि हमने नेचुरली, क्योंकि हमने जगन्य परितानंद के अर्धच्छेदों में जगन्य परितानंद की वर्गशाला का प्लस एक मिला ही थी, तभी तो इसकी वर्गशाला का आई थी। तो यहाँ वही बता रहे, फिर से देखो नीचे से चौथी लाइन, जगन्य अनंतानंद की अर्धच्छेद शलाकाओं में क्या करना है, बीच का भूल जाओ, जगन्य अनंतानंद की वर्गशाला का ही मिला देनी पर है। यानी यहाँ के अपने एग्जाम्पल चार की अर्धच्छेद है, नहीं नहीं जगन्य अनंतानंद की अर्धच्छेद शलाका है यहाँ अपनी 16 में जगन्य अनंतानंद के वर्गशाला का मिलानी है, 4, 20 आ जाएगी बराबर। अब ये 4 कैसा है उसको समझा रहे हैं, जगन्य अनंतानंद की जो वर्गशाला का है वो कितनी है, तो जगन्य परितानंद की अर्धच्छेद राशि से बड़ी है, ये बीच वाला आप पढ़ेंगे, ये ऐसी वाले उन्होंने आगे समझाए। देखो अभी पहला हाफ छोड़ दो, कॉमा के आगे पढ़ेंगे नीचे से चौथी लाइन, जगन्य परितानंत की अर्धच्छेद शलाकाओं से अधिक है ऐसी, वो ऐसी उसके साथ लगा दो। देखो जगन्य परितानंत की अर्धच्छेद शलाके ने अपने एग्जाम्पल में 2, उससे अधिक है ऐसी जगन्य अनंतानंद की वर्गशाला का, इसके अर्धच्छेद 2 है और इसकी वर्गशाला का 4 है। यहाँ क्या कहना चाहते हैं, जघन्य अनंतानंत के अर्धच्छेद में जघन्य अनंतानंत के ही वर्गशाला का मिला दो तो क्या होगा, एक बार उसकी वर्गित संवर्गित राशि के वर्गशाला का आएगी। देखो 16 के अर्धच्छेदों में 16 के ही वर्गशाला का मिला दो तो 16 की जो वर्गित संवर्गित राशि है उसकी वर्गशाला का आएगी। यानी इसके जितने अर्धच्छेद है ना उतनी राशि आगे चली जाना, वर्गशाला उतनी राशि आगे जाना। हाँ क्योंकि जगन्य परितानंत से असंख्यात गुणी है, यानी अनंत ही हो गई ना, अनंत का असंख्यात गुणा भी अनंत ही है, ख्याल है। एक बार वर्गित संवर्गित होगा तो क्या होगा, अभी हम अपना जगन्य अनंत अनंत यहाँ लिखते हैं, वही फॉर्मूला 2 बार 3 बार में चलेगा, अपने यहाँ अभी जगन्य अनंत अनंत है, उसके अर्धच्छेद हम 6 लिखते हैं और उसकी वर्गशाला का वह है, तो जगन्य अनंत अनंत को एक बार वर्गित संवर्गित करेंगे तो उसकी वर्गत उसका स्थान कौन सा होगा, तो ये जी है ना उतने स्थान आगे जाएंगे, वो प्लस 6 हो जाएगा, उतने स्थान आगे बढ़ना पड़ेगा ना, जितने इसके अर्धच्छेद है उतने आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसके अर्धच्छेद हमने कितने देखे थे, जघन्य परितानंत से भी असंख्यात गुणे थे, ख्याल है ना, तो उतने वर्ग स्थान आगे जाने पर यह राशि उत्पन्न होगी, इसका वर्ग 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 करते जाओ, ये पहली बार वर्गित संवर्गित राशि। यहाँ तक फॉर्मूला यही है, किसी राशि का एक बार वर्गित संवर्गित कर दो उसको, हम कोई भी संख्या लेते हैं यहाँ, जैसे हमको 256 संख्या मालूम है, उन्होंने दिखाया था ना तो उसका वर्गित संवर्गित करना है, तो वर्गित संवर्गित करना है तो इसके अर्धच्छेद कितने हैं 256 के, 8 है ना, 16 के 4 है, उसके वर्ग के 8 हो गए, इसके अर्धच्छेद है 8 बराबर, और 256 की वर्गशाला का है 3, तो हमने अभी जो कल 2 का मान लिया था, 2 की एक बार वर्गित संवर्गित राशि 4 होती है, 4 की एक बार और करो तो होगी 256, और 256 की और करो, ख्याल है ना, तो अभी 8 + 3 11वें स्थान पर जो कुछ होगा हम तो छठे स्थान पर इकट्ठी को गिना था हमने, बहुत आगे छठे स्थान पर इकट्ठी है, तो इकट्ठी 20 अंक प्रमाण है। खाली 10-10 नहीं बढ़ेंगे, ज्यादा बढ़ेंगे। 617 डिजिट उन्होंने बताए थे उस पर, वो तो एक बार वर्गित संवर्गित हुआ है, और वो आपने स्टार्टिंग किया था 2 से और यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट होगा जघन्य अनंत अनंत। अभी ये फॉर्मूला ख्याल में आया फिर बेटा, किसी भी राशि की वर्गित संवर्गित राशि है उसके कौन से स्थान पर है वो निकालना है, तो जो ओरिजिन अपना स्टार्टिंग पॉइंट है उसके अर्धछेद पर उसी वर्गशाला का मिला दो, उसके वर्ग स्थान उतने स्थान पर वो राशि होगी, वो स्थान होगा। इसको फिर पढ़ेंगे, अभी बरोबर ख्याल में आएगा। नीचे से चौथी लाइन आपको इसे बाद में कहेंगे, अभी बस होगा, आपको बहुत समझ में आ गया अभी तक तो समझा कि नहीं समझा, भले कल भूल जाओ उसकी कोई बात नहीं, अभी समझना बहुत जरूरी है। हाँ देखो नीचे से चौथी लाइन, इन जघन्य अनंत अनंत की अर्धच्छेद शलाकाओं में, अभी जघन्य अनंत अनंत की वर्गशलाका मिलानी है तो वर्गशलाका कितनी है वो बता रहे, जो जघन्य परितानंत की अर्धच्छेद शलाकाओं से अधिक है ऐसी जघन्य अनंत अनंत की वर्गशलाकाएं मिला देने पर यहां रुकना, ये बीच वाला कॉमा है ना उसमें जरा गड़बड़ होती है, क्या होगा, प्रथम बार वर्गित संवर्गित राशि की वर्गशलाकाएं होती है। अब ये किससे क्या बड़ी है वो भूल जाओ, बीच वाला वाक्य अगर निकाल देंगे तो अभी हम स्ट्रेट ऐसा पढ़ेंगे, जघन्य अनंत अनंत की अर्धच्छेद शलाकाओं में जघन्य अनंत अनंत की वर्गशलाकाएं मिला देने पर प्रथम बार वर्गित संवर्गित राशि की वर्गशलाकाएं होती है, कितना आसान है अब आगे जघन्य अनंत अनंत के अर्धच्छेदों को जघन्य अनंतानंत से गुणित करने पर, जो हमने पहले बहुत बार देखा था, देखो जघन्य अनंतानंत के अर्धच्छेदों को जघन्य अनंतानंत से गुणित करने पर प्रथम बार वर्गित संवर्गित राशि की अर्धच्छेद शलाकाएं होती है। अभी आपने जो 16 का ऊपर घटित करने को बोला था, 16 को हमने एक बार वर्गित संवर्गित किया था तो इकट्ठी प्रमाण आए थे। अभी अपना ये फॉर्मूला उसमें फिर दो, क्या फिर से पढ़ो, इसके अर्धच्छेद 16 के अर्धच्छेद को 16 से गुणित करने पर 16 के अर्धच्छेदों को 16 से गुणित करने पर इकट्ठी के अर्धच्छेद आते हैं। जघन्य अनंत अनंत अभी मान लेने, किसी भी राशि को वर्गित संवर्गित करने के लिए हमने 16 माने। आप क्या कहते हैं, हाँ जिस राशि को हमको वर्गित संवर्गित करना है उस राशि के वर्गशला का तो हमने निकाली, कैसे निकाली, जो राशि हमने वर्गित संवर्गित की उसके अर्धच्छेदों में उसके वर्गशला का मिला दी तो वो आए थे। अभी इसे अपने 16 के लिए ये 6 आ जाएगी। अब उस राशि के अर्धच्छेद निकालने हैं तो ये 16 राशि गुणा उसके अर्धच्छेद, कोई भी राशि उसके अर्धच्छेद से गुणा करो तो ये जो वर्गित संवर्गित राशि होगी उसके अर्धच्छेद का प्रमाण आ जाएगा, यानी इकट्ठी के अर्धच्छेद 64 आ जाएगी। देखो नीचे से दूसरी लाइन से फिर पढ़ते, जघन्य अनंत अनंत के अर्धच्छेदों को जघन्य अनंत अनंत से गुणित करने पर प्रथम वर्गित संवर्गित राशि की अर्धच्छेद शलाकाएं होती है, ये ख्याल आया, कोई भी राशि ले लो ऐसे ही। अभी हमको 4 को वर्गित संवर्गित करना है तो चार को वर्गित संवर्गित कहेंगे ने 4 × 4 × 4 × 4 256 आएंगे, तो 256 के हमको अर्धच्छेद निकालने, तो कैसे निकालेंगे, तो चार को चार के अर्धच्छेद से गुणा करो, तो 256 के अर्धच्छेद आ गए। और ये चार के वर्गशलाका में चार के ही अर्धच्छेद मिला दो तो 256 की वर्गशलाका आ जाएगी। क्या ना, वर्गित संवर्गित राशि के वर्गशलाका और अर्धच्छेद कैसे निकालना है, ये फॉर्मूला है। क्योंकि हमको जघन्य अनंतानंद को तीन बार वर्गित संवर्गित करना है, तो एक बार वर्गित संवर्गित करने से क्या हुआ, जघन्य अनंतानंद को उसकी जो एक बार वर्गित संवर्गित करना है ना, जघन्य अनंतानंद रेस टू जघन्य अनंतानंद, तो उसके अभी हमको अभी कौन से स्थान पर है, तो जघन्य अनंतानंद जिस वर्ग स्थान पर है उसमें उसी के जो अर्धच्छेद मिला दो तो उसके स्थान पर ये इसकी वर्गशलाका आ जाएगी। और इसके अर्धच्छेद कितने हैं, तो जघन्य अनंतानंद को उसी के अर्धच्छेद से मल्टीप्लाई करो तो इसके अर्धच्छेद आ जाएंगे, ज इंटू उसके छ। हाँ, अब आगे 22 पेज पर, ये प्रथम बार वर्गित संवर्गित राशि की अर्धच्छेद शलाकाएं। अब ये जो अर्धच्छेद शलाका निकली जघन्य अनंतानंत से अनंत गुणी है, जैसे हमने 16 पर घटाया था, 16 राशि के जो अर्धच्छेद है वो चार थे और 16 के वर्गित संवर्गित राशि के अर्धच्छेद 64 हुए, अनंत गुणे हो गए वो, क्योंकि इसके अर्धच्छेद भी अनंत ही थे। ख्याल है ना, हाँ, तो ये अनंत गुणे हो गए। क्या कहते हैं, प्रथम बार वर्गित संवर्गित राशि की अर्धच्छेद शलाकाएं जघन्य अनंतानंत से अनंत गुणी है, और उसी के अर्थात जघन्य अनंतानंत के उपरिम वर्ग से अनंत गुणी हीन है। अब हमने ये 16 को उसके राशि पर घटित किया था, 16 और यहाँ इकट्ठी लिया था, इकट्ठी के अर्धच्छेद 64 है, बराबर। अब ये क्या कहना चाहते हैं, 64 संख्या यानी प्रथम बार वर्गित संवर्गित राशि के जो अर्धच्छेद है वो 16 संख्या से अनंत गुणा है, 64 संख्या 16 से अनंत गुणा हो गई, और वही 16 संख्या, ये 64 संख्या है वो इस राशि का जो वर्ग होगा बीच में अभी 256 है, ये उससे अनंत गुणा है या इससे अनंत गुणा हीन है। ख्याल है ना, यानी इन बिटवीन वाला अनंत है वो। हाँ, यानी जघन्य अनंतानंत से ये जो उसकी वर्गित संवर्गित राशि है उसका अर्धच्छेद वो अनंत गुणा है, और इस राशि से जघन्य अनंतानंत का जो वर्ग है वो अनंत गुणा है, उससे अनंत गुणा है, इससे वो अनंत गुणा ही नहीं। उल्टा कहो, इसको मैं फिर पढ़ती हूँ, पहली लाइन, यह प्रथम बार वर्गित संवर्गित राशि की अर्धच्छेद शलाकाएं जघन्य अनंतानंत से अनंत गुणी है, और उसी के अर्थात जघन्य अनंतानंत के उपरिम वर्ग से अनंत गुणी हीन है, यानी अपनी यहाँ की भाषा में बोलना है 64 संख्या 16 से अनंत गुणी है और 256 से अनंत गुणी हीन है। ख्याल आता है, छोटी फिगर लेंगे तो जरा समझ में तो आता है, नहीं सच है वो कहते तो सच है क्या। अब आगे, अब ये प्रथम बार वर्गित संवर्गित राशि आई, अब इस प्रथम बार वर्गित संवर्गित राशि की अर्धच्छेद शलाकाओं में अभी फॉर्मूला वही फिट करेंगे। अब आप स्वयं मेरे को उत्तर दे सकते, इतनी बात आसान। उसकी अर्धच्छेद राशि, वो 16 को एक बार वर्गित संवर्गित करने पर इकट्ठी आई, इकट्ठी के अर्धच्छेद कितने हैं, तो 16 को उसी के अर्धच्छेदों से गुणा करो तो वर्गित संवर्गित राशि के अर्धच्छेद आ जाएगा, बराबर है। यानी हमें अभी ये वर्गित, अभी हमको ये जो वर्ग एक बार वर्गित संवर्गित राशि 16 को एक बार वर्गित संवर्गित किया तो इकट्ठी राशि आई। अब इसके आगे समझाएंगे। तीसरी लाइन, इन प्रथम बार वर्गित संवर्गित राशि की अर्धच्छेद शलाकाओं में प्रथम बार वर्गित संवर्गित राशि की वर्ग शलाकाएं मिला देने पर क्या होगा? अभी द्वितीय बार जो वर्गित संवर्गित है ना, उसकी वर्ग शलाकाएं ये, जैसे अभी हम 16 को एक बार वर्गित संवर्गित करने पर इकट्ठी आई, अभी इकट्ठी को एक बार वर्गित संवर्गित करना है तो इकट्ठी के अर्धच्छेद कितने हैं? हाँ, 64। और इकट्ठी के वर्ग शलाकाएं 6, तो 6 प्लस 64, अभी ऐसे वर्ग करते करते 70 पर स्थान पर इकट्ठी की एक बार वर्गित संवर्गित राशि आ जाएगी, यानी इकट्ठी रेस टू इकट्ठी द्वितीय बार हो गए। अब इसके अर्धच्छेद कितने आप ही स्वयं कहेंगे मुझे। A into 64 क्योंकि वो मूल राशि को उसी के अर्धच्छेद से गुणा करेंगे तो वर्गित संवर्गित राशि के अर्धच्छेद आ जाएंगे। देखो तीसरी लाइन से फिर पढ़ती हूँ, इन प्रथम बार वर्गित संवर्गित राशि की अर्धच्छेद शलाकाओं में प्रथम बार वर्गित संवर्गित राशि की वर्ग शलाकाएं मिला देने पर दूसरी बार वर्गित संवर्गित राशि की वर्ग शलाकाएं होती है ना? इकट्ठी की वर्ग शलाका और इकट्ठी के ही अर्धच्छेद मिला दो तो जो इकट्ठी को वर्गित संवर्गित करने पर जो राशि आएगी उसकी वर्ग शलाका हो जाएगी, तथा प्रथम बार वर्गित संवर्गित राशि की अर्धच्छेद शलाकाओं के द्वारा प्रथम बार वर्गित संवर्गित राशि को गुणित करने पर, यानी इकट्ठी को 64 से गुणा करने पर दूसरी बार वर्गित संवर्गित राशि की अर्धच्छेद शलाकाएं होती है, इसकी अर्धच्छेद शलाकाएं आएगी इकट्ठी गुणा 64। ये दूसरी बार वर्गित संवर्गित राशि की अर्धच्छेद शलाकाएं अब ये कितनी है तो प्रथम बार वर्गित संवर्गित राशि से अनंत गुणी है, जैसे हमने वो 16 से 64 अनंत गुणा देखा था वैसे अभी ये जो इकट्ठी है तो इकट्ठी से इकट्ठी गुणा 64 है वो अनंत गुणा है। अभी इसका इकट्ठी का जो स्क्वायर होगा उससे अनंत गुणा हीन होगा, ख्याल आता है ना? यही फॉर्मूला आगे भी चलेगा। अनंत गुणी और उसी के नीचे से तीसरी लाइन, और उसी के अर्थात प्रथम बार वर्गित संवर्गित राशि के ऊपरी वर्ग से अनंत गुणीहीन है, यानी अपनी भाषा में बोलना है तो इकट्ठी के राशि से वो इकट्ठी गुणा 64 वो अनंत गुणीहीन है। नेचुरली इकट्ठी को इकट्ठी से गुणा करो और इकट्ठी से 64 को गुणा करो, इसमें कितना वास्ट डिफरेंस है ना? अभी ख्याल में आता ना ये क्या कहना चाहते हैं। इन दूसरी बार वर्गित संवर्गित राशि की, अब ये जो वर्गित संवर्गित राशि है ए रेस टू ए, अब तीसरी बार उसको वर्गित संवर्गित करना है तो क्या करेंगे? दूसरी बार वर्गित संवर्गित राशि के वर्ग शलाका में उसी के अर्धच्छेद मिला देंगे तो तीसरी बार वर्गित संवर्गित राशि की वर्ग शलाका आएगी। हाँ, जो कुछ होगा वो देखो नीचे से दूसरी लाइन, इन दूसरी बार वर्गित संवर्गित राशि की अर्धच्छेद शलाकाओं में दूसरी बार वर्गित संवर्गित राशि की वर्ग शलाकाएं मिलाने देने पर तीसरी बार वर्गित संवर्गित राशि की वर्ग शलाकाएं होती है। ये तो यहीं पर छोड़ा है, और उसके अर्धच्छेद कितने हो गए इस राशि को, ये उसके अर्धच्छेदों से गुणा करने पर, यानी ए रेस टू ए को मल्टीप्लाइड बाय ए इंटू 64 वो अगली वाली राशि के अर्धच्छेद हो जाएंगे। ख्याल है? फॉर्मूला अपने ख्याल में ले लो, बस बाकी सब भूल जाओ। अब विशेष अर्थ करेंगे उसको देखेंगे। जो राशि विरलन देय क्रम से उत्पन्न होती है, अब इसका फॉर्मूला बता दें, विरलन देय ने वही राशि विरलन करना और वही राशि देय रखना, जैसे हमने चार को चार बार लिखा था, तो क्या कहते हैं उसके अर्धच्छेद, विरलन राशि के जो अर्धच्छेद हो गए, जैसे अभी हम 16 को ले ले या 4 को ले ले, तो उसके अर्धच्छेद विरलित राशि को देय राशि के अर्धच्छेदों से गुणा करने पर आते हैं, यानी उसी राशि को उसी के अर्धच्छेदों से गुणा करने पर, यहाँ विरलन और देय सेम है ना, तो 4 को 4 बार लिखकर हम गुणित करते हैं, 4 को जो एक बार वर्गीय समवर्गित करते हैं 4 को, तो 256 आते हैं। 4 को एक बार वर्गीय समवर्गित करते हैं तो 256 आते हैं। तो यहाँ क्या कहते हैं, जो राशि विरलन देय क्रम से उत्पन्न होती है उसके अर्धच्छेद 4 के अर्धच्छेद 2, विरलित राशि को देय राशि के अर्धच्छेदों से गुणा करने पर आते हैं। अभी ये जो विरलिन राशि और देय राशि अपनी अभी तो समान है, तो 4 को 2 से गुणा करने पर उसके वर्गित संवर्गित राशि के अर्धच्छेद आते हैं, बराबर है ना, यही अभी तक हमने फॉर्मूला बार बार देखा था। तथा उसकी वर्गशलाकाएं विरलित राशि के अर्धच्छेदों में देय राशि के अर्धच्छेदों के अर्धच्छेद या वर्गशलाकाएं मिला देने पर होती है, यही फॉर्मूला। फिर इसके जो वर्गशलाका है वो उसके अर्धच्छेदों में मिला देने पर इसकी वर्गशलाका आती है। जैसे 4 के अर्धच्छेद 2 है, 4 की वर्गशलाका 1 है, 2+1 3 हो जाएंगे, तो 256 की वर्गशलाका 3 आती है। यह वर्गित व संवर्गित राशि के बारे में ये बात हो रही है। यहाँ देय राशि डिफरेंट होगी तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, ये पहले हमने जिस पद्धति से पढ़ा है उसको समझेंगे। क्या लें अर्धच्छेद के अर्धच्छेद कहो या वर्गशाला का कहो, इसलिए ऐसा लिखा। देखो ये दूसरी लाइन फिर पढ़ती हूँ, तथा उसकी वर्गशाला काए विरलित राशि के अर्धच्छेदों में देय राशि के अर्धच्छेदों के अर्धच्छेद या वर्गशलाकाएं मिला देने पर, देय राशि डिफरेंट होगी तो उसके अर्धच्छेदों के अर्धच्छेद ले लेना। अब इसके अर्धच्छेद का अर्धच्छेद कितने हो गए, हाँ तो इसके अर्धच्छेदों में इसके अर्धच्छेद के अर्धच्छेद मिला दो, वही संख्या आ गई, वही बताना चाहते हैं। चौथी लाइन, गणित के इस नियम के अनुसार जघन्य परितानंत के अर्धच्छेदों से जघन्य परितानंत गुणा कर लेने पर जघन्य युक्तानंत के अर्धच्छेद उत्पन्न होते, ऐसे बीच में लिखो या आते हैं लिखो, क्योंकि वो दोनों वाक्य और लिखा है ना, तो हमें लगता है और उसको कोई अलग गणित है, यानी हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, पूरे वाक्य को हम दो वाक्यों में डिवाइड कर रहे हैं समझने के लिए, कुछ एडिशनल अपनी ओर से नहीं डाल रहे उसमें, क्या नहीं, क्योंकि इसी वाक्य में आगे अगले लाइन पर उत्पन्न होगी ऐसा लिखा है, तो वो उत्पन्न होगी हम दो बार लिख रहे, इतनी अपने समझ के लिए। क्या कहते हैं, अभी हमने गणित का फॉर्मूला जान लिया है पक्का, जिस राशि को उसके अर्धच्छेदों से गुणा करेंगे तो जो वर्गित संवर्गित राशि के अर्धच्छेद आ जाएंगे। फिर से इसको पढ़ते हैं, गणित के इस नियम के अनुसार, चौथी लाइन ना, जघन्य परितानंत के अर्धच्छेदों से जघन्य परितानंत को गुणा कर देने पर जघन्य युक्तानंत के अर्धच्छेद उत्पन्न होते हैं, ये ख्याल में आया, क्योंकि उसकी वो वर्गित समवर्गित राशि है, और जघन्य परितानंत के अर्धच्छेदों में उसी की वर्गशलाकाएं मिला देने पर जघन्य युक्तानंत की वर्गशलाकाएं उत्पन्न होगी, ये भी अभी ख्याल में है ना, अर्धच्छेद प्लस वर्गशलाका, तो जघन्य परितानंत की वर्गित संवर्गित राशि को ही जघन्य युक्तानंत कहते हैं, और उसका अगला स्थान वो अनंतानंत का था, इसलिए वहां पर हमने वर्गशलाका में एक और मिलाया था। अब यहाँ हमको खाली वर्गित संवर्गित राशि, जघन्य परितानंत की वर्गित संवर्गित राशि है जघन्य युक्तानंत, तो यहाँ युक्तानंद पर घटा रहे सब। हाँ सब जगह ये फिट होता है, क्योंकि हमारा ओरिजिनल कहाँ से शुरू हुआ था, जघन्य अनंतानंत को तीन बार वर्गित संवर्गित करो तो जो राशि आएगी उससे मिथ्या दृष्टियों की राशि अनंत गुना है। ये अपनी मूल बात चल रही थी, उसके लिए यहाँ गणित के फॉर्मूले बता रहे हैं। क्या ले ना, तो अभी जहाँ हमने उत्पन्न होते लिखा है उसके आगे पढ़ेंगे। और जघन्य परितानंत के अर्ध छेदों में उसी की वर्गशला का मिला देने पर जघन्य युक्तानंत की वर्गशला का उत्पन्न होती है। ये ख्याल में आया, अर्ध छेदों में वर्गशला का मिलाएंगे तो वो अभी यहाँ की वर्गशला का होगी, और अर्ध छेदों को मूल संख्या से गुणा करेंगे तो वर्गित संवर्गित राशि की अर्ध छेद शला का आएगी। फिर भी प्रकृत में, यानी ऐसा है, फिर भी प्रकृत में यानी अभी वर्तमान में जघन्य अनंतानंत की वर्गशला का है और अर्धच्छेद लाना है, यानी जघन्य परितानंत की वो वर्गित संवर्गित राशि जघन्य युक्तानंत आती है, परंतु अपना विषय क्या है, जघन्य अनंतानंत लाना है, तो एक स्थान आगे वाला चला गया। जघन्य परितानंत की ये राशि लानी थी, अगर लाते हम तो क्या कहेंगे हम, इसके वर्गच्छेद, इसके वर्गशलाका में इसी के अर्धच्छेद मिला दे तो इसकी यहाँ ये वर्गशलाका आ जाती, परंतु अपना स्थान कौन सा है, ये जघन्य, इसके बदले यहाँ जघन्य युक्तानंत लिखो, वही संख्या अपना, तो इसका अगला वाला स्थान है, क्योंकि इसका स्क्वायर करो तो जघन्य अनंतानंत आता है ये। हाँ तो इसमें प्लस वन करना पड़ेगा इसके लिए, है ना, और यहाँ इसको इससे गुणा करने पर यहाँ का स्थान आता था, जपो इंटू छः आते थे यहाँ, अगला स्थान कितना होगा, दो गुना, इसलिए अर्धच्छेद को द्विगुणित अर्धच्छेद से इसको गुणा किया, ऐसा बोला था हमने, यानी यहाँ लिखा था, क्या है ना, जघन्य अनंतानंत को जब निकाला था तो जघन्य परितानंत के अर्धच्छेदों में वर्गशला का प्लस एक मिलाई थी, क्योंकि अकेली वर्गशला का मिलाते तो जगन युक्ता संख्यात का युक्तानंत का स्थान आता, उसका अगला स्थान एक प्लस है, और इसके अर्धच्छेद भी, इसके अर्धच्छेद निकालते तो डायरेक्ट जगन्य परितानंत को जगन्य परितानंत के अर्धच्छेदों से गुणा करते तो जगन्य युक्तानंत के अर्धच्छेद आ जाते, परंतु हमें तो उसका वर्ग स्थान लेना है, इसलिए इंटू टू करना, अर्धच्छेद हमेशा द्विगुणित होते हैं, पर वर्ग, पर स्क्वेयर, दो गुना दो गुना दो गुना होते, क्या है ना, ये अभी कितना सिंपल हो गया, वर्गित, इसकी वर्गित संवर्गित राशि यही है और जघन्य अनंतानंद तो उसका वर्ग है। हाँ इंटू टू, इसीलिए इंटू टू लिखा, मूल में इंटू टू द्विगुणित करके ही हमने लिखा, अगला ही स्थान है उसका, नेक्स्ट, इमीडिएट नेक्स्ट स्थान है। आपको याद नहीं होगा पहले पेज पर दो गुना अर्धच्छेदों से गुणा करो ऐसा लिखा था, वो दो गुणा क्यों करना, ये अभी ज्यादा क्लियर होगा। पहले तो खाली दो गुना किया इसलिए हम भी बोले दो गुना, हाँ एक कहाँ से, वो तो वर्गित संवर्गित राशि के लिए है, वर्गित संवर्गित राशि के लिए प्लस वन, वो उसका नहीं है, इसकी वर्गित संवर्गित राशि डायरेक्ट जघन्य युक्तानंत आती है, वो प्लस वन वो बीजगणित के फॉर्मूला से आता है। ये इसमें वर्गित संवर्गित रेशो है, इसका स्क्वायर है, ये जघन्य युक्तानंत का स्क्वायर करो वर्ग करो तो जघन्य अनंत अनंत आएगा, तो वर्ग शलाका में तो एक ही मिलाना पड़ेगा और अर्धच्छेद डबल करने पड़ेंगे, क्या लेना, आसान है ना, बिल्कुल आसान है, क्यों नहीं। घर जाके लिखो। ये संदृष्टि भी यही मैं तैयार करती हूँ, पहले से कहीं करके नहीं रखी। कुछ सूझ जाता है तो छोटे फिगर्स में पहले लेते हैं ना, तो हमें फॉर्मूला ख्याल में आता है। ये हमारे गोमर सर के भी कितने संदेश, डॉक्टर के पास लिखे हुए, मेरे पास कुछ नहीं लिखा हुआ वे टेबल बनाते थे तभी। हाँ देखो, ये अभी हम यहाँ देखेंगे, ऊपरी में एक अधिक होती है, वर्ग की वर्गशा। नीचे से चौथी लाइन हमने आधी पढ़ ली ना, क्या नहीं? अच्छा अच्छा, अर्ध उत्पन्न होगी। अच्छा, छह लाइन पढ़ी अभी हमने, छठी लाइन में आगे चलेंगे। फिर भी प्रकृत में जघन्य अनंतानंत की वर्गशला का है और अर्धच्छेद लाना है, परंतु जघन्य अनंतानंत जघन्य युक्तानंत के उपरिम वर्ग रूप है। यानी जघन्य युक्तानंत का एक बार वर्ग करो तो जघन्य अनंतानंत संख्या आती है। उपरिम है ऊपर का, नेक्स्ट, और वर्ग से उपरिम वर्ग की वर्गशलाकाओं और अर्धच्छेदों को लाने के लिए क्या कहते हैं? वर्ग के ऊपरी वर्ग ने नेक्स्ट वर्ग, सभी वर्ग धारा ही है ना, वर्ग धारा की सभी संख्याएं वर्ग की है। जैसे चार वर्ग है, 16 वर्ग है, उसका वर्ग 256, ये सभी वर्ग की संख्याएं हैं। वर्ग का वर्ग का वर्ग का वर्ग चला है तो क्या कहते हैं? वर्ग से ऊपरी वर्ग की वर्ग चला का कोई भी वर्ग है। हम मान लेते 16 ये वर्ग संख्या है और उसकी ऊपरी वर्ग कौन सा है? 256 है, ये वर्ग है और उसका ऊपरी वर्ग 256 है, तो क्या कहते हैं? यहाँ देखो, वर्ग से ऊपरी वर्ग की वर्ग शलाकाओं और अर्धच्छेदों को लाने के लिए यह नियम है कि विवक्षित वर्ग के अर्धच्छेदों से, यानी 16 के अर्धच्छेदों से ऊपरी वर्ग के अर्धच्छेद दूने, 256 के अर्धच्छेद उससे दूने हो गए, तो 4 से दूने उसके अर्धच्छेद 8 हो जाएंगे, और विवक्षित वर्ग की वर्ग शलाकाओं से, यानी 16 की वर्ग शलाका 2 थी, उससे उसका ऊपरी वर्ग जो है 256, उसकी वर्ग शलाका कितनी होगी? कि 1 अधिक होती है, यानी इसकी वर्गशला का 2 तो उसकी वर्गशला का 3 हो जाएगी। इसलिए अब ये जघन्य युक्तानंत पर ये फॉर्मूला फिट करेंगे। इसलिए जघन्य युक्तानंत के अर्धच्छेदों को दूना कर देने पर जघन्य अनंतानंत के अर्धच्छेद होंगे, लिखो वहां अपने समझने के लिए, क्योंकि एक वाक्य को हम दो वाक्यों में बांट देते हैं। ये ख्याल आया? जघन्य युक्तानंद तो ये पहला एक एक्स नंबर पर है, तो उसका वर्ग है जो अगला वाला कौन सा? जघन्य अनंतानंत। जघन्य युक्तानंत का वो वर्ग है तो उसकी वर्गशला का कितनी होगी? इसमें प्लस करना, वर्गशला का प्लस करना, 1 प्लस करना, और अर्धच्छेद कितने हो गए? 2 गुना कर देना। इसको फिर वाक्य इसको पढ़ती हूँ मैं, नीचे से चौथी लाइन अंत में। इसलिए जघन्य युक्तानंत के अर्धच्छेदों को दूना कर देने पर जघन्य अनंतानंत के अर्धच्छेद होंगे, बराबर, और जघन्य अनंतानंत की जघन्य युक्तानंत की वर्गशलाकाओं में 1 और मिला देने पर जघन्य अनंतानंत की वर्गशलाकाएं होगी। ये ख्याल में आ रहा है? आगे का वर्ग है ना, वर्गशलाका 1 से बढ़ेगी और अर्धच्छेद 2 गुने हो जाएंगे। इस संपूर्ण व्यवस्था को ध्यान में रखकर यह कहा गया है कि जघन्य परितानंत के अर्धच्छेदों में उसी की 1 अधिक वर्गशलाकाएं मिला देने पर जघन्य अनंतानंत की वर्गशलाकाएं, यहां भी लिखो होती है, ये भी वाक्य हम दो में डिवाइड करेंगे। क्योंकि हमें जो वर्गित संवर्गित का जो रेशो के ये जो मिलता था वो तो युक्तानंत तक मिलता था, जघन्य युक्तानंत, और हमारा स्थान एक स्थान आगे है, तो जो चीजें हमने युक्तानंत पर निकाली है उससे अर्धच्छेद तो दुगुनित करना और वर्गशला का 1 और बढ़ा देना है, ना? होती है, और जगन्य परितानंत की द्विगुणित, ये लिखा ना यहाँ द्विगुणित अर्धच्छेद शलाकाओं से जगन्य परितानंत को गुणित कर देने पर जगन्य अनंतानंत की अर्धच्छेद शलाकाएं होती है। ये ख्याल आया, जगन्य युक्तानंत की निकालना है तो हम डायरेक्ट जगन्य परितानंत मल्टीप्लाइड बाय उसके अर्धच्छेद, परंतु ये आगे वाला स्थान है इसलिए उसको दो गुणा कर देना। इसी प्रकार वर्गित संवर्गित राशि की वर्ग शलाकाएं और अर्धच्छेद लाने की पद्धति के अनुसार प्रथम द्वितीय और तृतीय बार वर्गित संवर्गित राशि के अर्धच्छेद और वर्ग शलाकाओं के संबंध में भी समझ लेना चाहिए। यानी जैसे भी ये फॉर्मूला लगाया तो जघन्य अनंतानंत को हमको तीन बार वर्गित संवर्गित करना है, तो जितनी जघन्य अनंतानंत की जो अर्धच्छेद है और उसकी जो वर्ग शलाकाएं है उसके अर्धच्छेद प्लस वर्ग शलाका, वो प्रथम बार वर्गित संवर्गित राशि के वर्ग शलाकाएंगे, और उसके अर्धच्छेद निकालने हैं तो कैसे निकालने, जघन्य अनंतानंत को उसी के अर्धच्छेदों से मल्टीप्लाई करो तो ये प्रथम बार वर्गित संवर्गित राशि के अर्धच्छेद आ जाएंगे। यही फॉर्मूला आगे भी दूसरी बार और तीसरी बार लगा देना। बिल्कुल नहीं, वो तो मध्यम है, अभी तो शुरू है, ये तो अभी अनंतानंत के छोटे छोटे बहुत जगन्य की ओर वाले।
जो आपका कहना है कि उत्कृष्ट अनंतानंत को एक्सीड होगी क्या, तो केवल ज्ञान से कोई चीज अधिक होगी और केवल ज्ञानी नहीं जानेगा, ऐसा होगा ही नहीं ना।
उत्कृष्ट अनंतानंत ऐसी चीज है, ये तो हम मल्टीप्लीकेशन में बता रहे, इसके अर्धच्छेद उसके अर्धच्छेद, इसको मल्टीप्लाई करो उसको अनंत गुणा करो। केवल ज्ञान, जब केवल ज्ञान की बात आएगी तो वहाँ तो ऐसा कहते हैं कि केवल ज्ञान के लिए अन्य कोई अनंतानंत के मल्टीप्लिकेशन में भी बता नहीं सकते, इतनी वो ह्यूज फिगर है। तो उसके लिए तो ऐसा कहेंगे, जहाँ तक हम ये गणित कह सकते हैं वहाँ तक, तो जो जो मध्यम अनंतानंत वाला जो कुछ हमारे पॉसिबल है, गणित में पॉसिबल है, वो जो संख्या है वो केवल ज्ञान में से माइनस करो और फिर वही संख्या उसी में मिला दो, वो केवल ज्ञान के, क्योंकि उसको किसी के साथ उसका कोई संबंध बता ही नहीं सकेंगे, कंपैरिजन नहीं हो सकती उसकी। ये अनंत क्या है और केवल ज्ञान क्या है ये हमें पता नहीं है, ये भावों की अनंतता ही सर। मैक्सिमम पॉसिबल वो केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद है। ये सारे अनंतानंत जो चीजें है वो केवल ज्ञानी के अनंत विभाग में, वो ज्ञान के अनंत विभाग में जानी जाती है। नहीं समझे, एक केवल ज्ञान में इतने अनंत अविभाग प्रतिच्छेद, ऐसा केवल ज्ञानी कितने केवल ज्ञानियों को जानता है, अनंत। और खाली अनंत केवल ज्ञान को ही नहीं जानता, वो अनंत अनंत उसके सभी भव जानेंगे, वो सब उसने कौन,
अनंत केवल, अनंत केवल ज्ञानियों के एक समय के ज्ञान में जो झलक रहा है
वो सब जानेंगे,
एक के नहीं, अनंत के जो झलक रहा है वो एक केवल ज्ञानी अपने एक समय के केवल ज्ञान में सब जानता है।
और वो ये भी जानेगा इतने अनंत अभी सिद्ध है और फिर और अनंत काल के बाद इतने सब है, वो उनके भी केवल ज्ञान अभी उनको ज्ञान में है ना कि नहीं, अनादि अनंत सभी सिद्ध राशि उनके ज्ञान में है, वो केवल ज्ञान क्या होगा उस पर हम विचार करेंगे ना, तो वो तो ज्ञान की महत्ता आती है। यानी एक भी जीव केवल ज्ञानी है और हम उसका केवल ज्ञान निश्चित करते हैं ना, तो हमें ज्ञान स्वभाव की यानी समझ आती है कि ज्ञान स्वभाव क्या चीज है। बिल्कुल हर एक जीव का ज्ञान स्वभाव, इसे ज्ञान स्वभाव में तो कोई चेंज नहीं है, वही का वैसा हर एक का। तो ज्ञान स्वभाव कैसे होता है कि जो इतनी सारी चीजें जानता है अपने में रहकर जानता है, ये चीजें जानने के लिए हम आंखें फाड़कर इसको देखते तो जानते ही है, ऐसी पराधीनता नहीं है ज्ञान में, ख्याल है ना। केवल ज्ञानी ज्ञान स्वयं में रहकर अनंतानंत चीजों को अपनी स्व सामर्थ्य से जान लेता है। एक केवल ज्ञानी को भी ठीक तरह से पहचाने ना तो बस निहाल हो जाए ऐसी बात, इसलिए वो सर्वज्ञता और केवल ज्ञान की बातें पहले लेते और ये सारे अनंतानंत के भेद ऐसे ऐसे समझाते हुए जैसे आकाश के अनंत वे भाग में सारे छह ही द्रव्य समा जाते हैं ना, वैसे केवल ज्ञान के अनंत वे भाग में सभी जीवों, सभी द्रव्य गुण पर्याय तीनों काल के उसके अनंत वे भाग में समा जाते हैं। शास्त्र में आता है ऐसे अनंत अनंत लोकालोक होते तो भी केवल ज्ञानी वो बिल्कुल उसके अनंत विभाग से जान लेता। देखो अभी यहाँ देखते हैं, ये हो गया ना इसी प्रकार उदाहरण पर आ गया। अभी उदाहरण बीज गणित से जघन्य परितानंत को वर्गित संवर्गित करने से जघन्य युक्तानंत उत्पन्न होता है, ये तो हमने अभी बहुत अच्छी तरह से जान लिया। तथा जघन्य युक्तानंत के वर्ग प्रमाण जघन्य अनंतानंत है। मान लो जघन्य परितानंत का मान, मान यानी प्रमाण 2^2 लिखा उन्होंने, तो परितानंत की वर्गित संवर्गित राशि के उपरी वर्ग प्रमाण जघन्य अनंतानंत कितना होगा? तो उन्होंने फाइनली फिगर लिख दिए 2^2। वो तो बाद में आएगी, 2^2 वो रेस टू टू में प्लस है और प्लस वन, जैसे पहले वो क में समझाया था, ये घातांक राशि जो है ना उसके ये जो ऊपर ऊपर के घातांक है वो कैसे प्लस में आ जाते हैं, ये बीजगणित का फॉर्मूला है, हम उसमें नहीं उलझेंगे। तो वो मान लेते कि 2^2 आ गया, ये ऊपर का सारा झमेला वो कम ही समा दिया उन्होंने। फिर प्रथम बार वर्गित संवर्गित राशि आ जाएगी तो उसमें फिर और वो रेस्टो हो जाएगा ना, तो उन्होंने 2^2 ख लिया मान लेते हैं। द्वितीय बार कर लिए तो 2^2 ग लिया मान लेते हैं, और तृतीय बार वर्गित संवर्गित किया 2^2 प्लस ग और वो (1) ग कर दिया। ये हमने जो संख्याओं में देखा है वही आप याद रखना, नहीं तो ये इसको समझने और घोटाला हो जाएगा। हमने 4 के 16 के ऐसे वर्गित संवर्गित राशि देखी है, उसमें तो आपको बराबर समझ में आ गया है ना, हमने अंक गणित से समझ लिया। दो संख्या से लेकर जितनी बार वर्ग करने से विवक्षित राशि उत्पन्न होती है उतनी उस वर्ग राशि की वर्ग शलाकाएं होती है। जैसे 4 की वर्गशलाका 1 और 16 की 2 होती है, क्योंकि 2 का 1 बार वर्ग करने से 4 और 2 बार वर्ग करने से 16 उत्पन्न होते हैं। तथा विवक्षित राशि को जितनी बार आधा आधा करते हुए 1 शेष रहे उतने उस राशि के अर्धच्छेद होते हैं। जैसे 16 के अर्धच्छेद 4 होते हैं, बीजगणित से 2^2 राशि के अर्धच्छेद 2 होंगे और वर्गशला 2 होंगे और वर्गशला का अ होगी 2^2 होंगे। अर्धच्छेद 2^2 होंगे और वर्गशला का अ होगी। अब आगे इन सब राशियों की वर्गशलाकाएं और अर्धच्छेद लिखे जाते हैं। तो पहली लाइन में उन्होंने प्रमाण लिखे हैं, वो किसका प्रमाण है? तो वर लिखा है जघन्य परितानंत, ये जो राशि 2^2 लिखा है उन्होंने, उसके आगे जघन्य अनंतानंत, उसके बाद प्रथम बार वर्गित संवर्गित, द्वितीय बार वर्गित संवर्गित और तृतीय बार वर्गित संवर्गित, उसके प्रमाण वहाँ उन्होंने लिख दिए। जैसे हमने अपने एग्जाम्पल में मान लिए थे, हमने 4 माना था, फिर वो जघन्य अनंतानंत को वो जब जो कुछ हमने पनट्ठी माना था उसके आगे वाले जो संख्या उसके 1 बार 2 बार 3 बार वर्गित संवर्गित होता है, उसकी वर्गशला का कितनी है? तो यहाँ उन्होंने वर्गशला का अ मानी है। हमने 4 की वर्गशला का 1 होती है उसी का एग्जाम्पल लिया था, और उसके आगे की वर्गशला का वो उसके अर्धच्छेद मिला देने पर जितनी राशि आती है उसकी उसकी उतनी वर्गशला का होगी। अब नीचे अर्धच्छेद लिखे हैं, हाँ जघन्य अनंतानंत की वर्गशला का, यानी प्रमाण के नीचे वर्ग श लिखा है ना, वो पहली संख्या में अ लिखा है, उसके आगे क्या लिखा है? 2^+(1) करना, वहाँ ओ एक लिखा है, वो अ प्लस वन चाहिए। देखो जगन्य अनंत अनंत वाला कॉलम ऊपर से नीचे देखो, हाँ, और वर्गशाला का राशि में रुको, उसमें अभी उसमें 2 raised to a plus 1 करना। जैसे प्रमाण में अ प्लस वन है वैसे यहाँ पर भी ले लेना। अब उसके अर्धच्छेद नीचे लिखे, हाँ, यह 30 अभी हम नीचे पढ़ेंगे, वो बीच में कुछ उसमें अभी माथा मारने की जरूरत नहीं, हमने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है, ख्याल है ना। हाँ, यह तीसरी बार वर्गित संवर्गित राशि की वर्गशाला का राशि प्रथम बार वर्गित संवर्गित राशि के ऊपर एक भी वर्गस्थान वृद्धि को प्राप्त नहीं हुई है, अर्थात प्रथम बार वर्गित संवर्गित राशि के ऊपरी वर्ग के भीतर ही तीसरी बार वर्गित संवर्गित राशि की वर्गशाला का राशि आती है, यानी उसकी वर्गशाला का राशि भी प्रथम बार वर्गित संवर्गित राशि का जो वर्ग करने जाओ तो वो बहुत बड़ा होगा, परंतु उससे वो तीसरी बार वर्गित संवर्गित राशि की जो वर्गशाला का है वो उसके भीतर भीतर है वर्गशाला का राशि। इसलिए इन दोनों राशियों की अर्थात प्रथम बार वर्गित संवर्गित राशि की वर्गशलाकाएं और तृतीय बार वर्गित संवर्गित राशि की वर्गशलाकाओं की वर्गशलाकाएं समान होते हुए भी वे वर्गशलाकाएं जघन्य परितानंत से असंख्यात गुणी ही होती है। ये वर्गशलाका की भी वर्गशलाका निकाली, देखो वर्गशलाका की वर्गशलाका का अर्थ क्या होता है, जैसे अपना द्विरूप वर्ग धारा में हमें घटित करके देखना चाहिए। पनट्ठी की वर्गशलाका कितनी है, 4, और इस 4 संख्या की वर्गशलाका कितनी है, 1। नहीं समझे, पनट्ठी की वर्गशाला का 4 है और 4 संख्या की वर्गशाला का कितनी है, 1 है, वही बताना चाहते हैं वर्गशाला का की वर्गशाला का, क्योंकि वो वर्गशाला का भी, देखो ऐसी बात है, ये भी मैं बता दूं आपको, 256 की वर्गशाला का 3 है, वो इस द्विरूप वर्ग धारा में आएगी ही नहीं, नहीं समझे, द्विरूप वर्ग धारा में वर्ग का वर्ग वर्ग का वर्ग वर्ग का वर्ग 4 है या 16 है या 256 है 65536 है, ये सब इवन फिगर्स हो गए, तो ऑड वाले में इनकी वर्गशाला का इस राशि में इसमें इस फिगर में नहीं होगी, 2 भी नहीं होगी, ऑड नंबर भी नहीं होगे और 2 भी नहीं होगी, जिसको 4 से भाग जाता है ऐसी संख्या इस द्विरूप वर्ग धारा में कहीं भी पाई जाएगी। यानी कोई कोई ये वर्ग ऑड फिगर्स की जो है ना इसके इसका द्विरूप वर्ग धारा में नहीं आएगी, जैसे 5-6 भी नहीं आएगी, 7 नहीं आएगी, 8 आएगी, 9-10, 9-10-11 नहीं आएगी, 8 नहीं आएगी, सॉरी 8 नहीं आएगी, तो 16 आएगी, तो उसका वर्ग यानी वर्ग के स्थान आएगी उसके, नहीं ये पहला हमने नियम पढ़ा था, कौन से वर्ग स्थान में कौन सी वर्गशाला का इसमें आती है, 4 तो आ गई,
5 से लेके 15 तक नहीं
आएगी, फिर 16 भी आएगी,
16 से लेके 63 तक नहीं आएगी, 64 आएगा,
64 भी नहीं आएगा,
64
कहाँ है इसमें,
यानी
वो भी उसके भी वर्ग वर्ग में चला जाएगा, वर्गशाला का के भी वर्ग ऐसे हो जाते हैं, 4 का वर्ग वर्ग का वर्ग वर्ग का वर्ग उसमें भी होगा। देखो शलाकाओं में भी पहला 4 आया ना, ये पनंटी को चौथा स्थान है, अभी इसके वर्गशाला का जब वर्ग द्विरूप वर्ग धारा में कब आएंगे, ये ऐसे स्थान उसके द्विरूप वर्गधारा में आएगी, वर्गशाला का ये होगी तो ही द्विरूप वर्गधारा में आएगी। ये जिसकी वर्गशाला का होगी वो द्विरूप वर्गधारा में आएगी। चलो इसको हम कल पढ़ेंगे फिर दोबारा यहीं से, ये जो टेबल है ना उसके नीचे से तीसरी बार वर्गीत संवर्गीत लिखा है जावाणी के।